ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष नूर रतन हैं। 20 साल से जिनको बाबा से बाबा की पालन लेते हुए 20 साल से अधिक समय हो गया, ऐसे बाबा के विशेष बच्चे हैं हम सब। तो जो आज का विशेष टॉपिक मिला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाबा हम सबसे चाहता है इस समय कि हम सभी तीव्र पुरुषार्थी बने, क्योंकि समय कम है ना। तो बाबा ने कहा अचानक, एवरेडी और बहुत काल, क्योंकि अचानक कभी भी कुछ हो सकता है, और एवरेडी माना संपन्न और संपूर्ण बने, और बहुत काल बने तब जाकर के ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें बाधा कौन सी है, जो आज का टॉपिक रखा गया है, लीकेज। लीकेज कहां होती है जिससे कि हम तीव्र पुरुषार्थी के बजाय, नंबर वन पुरुषार्थी के बजाय, बाप के दिल पसंद पुरुषार्थी के बजाय हम क्या बन जाते हैं, अलबेले पुरुषार्थी बन जाते हैं या साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो हमें कहां कहां लीकेज होती है वो चेक करनी है, और अलबेलापन किस रूप में आता है, अधिकतर रॉयल रूप में आता है, किस रूप में अलबेलापन आता है जिससे कि हम बाबा की, जो बाबा हमसे चाहता है, बाबा की जो हमसे शुभ आश है उसको हम पूरी नहीं कर पाते। तो आप तो सभी अनुभवी हैं, तो मैं चाहूंगा आप में से आप बताएंगे लीकेज कहां कहां से आती है। लीकेज कहां से आती है, आलस्य से आती है, और देह अभिमान से आती है, और मैपन से आती है, और कहां से आती है। माइक लेके बता सकते हैं, कोई माइक मैंने इसलिए यहां रखवाया है, कोई अगर वैध संकल्प से आता है, व्यवहार में हम जब सेवा में आते तो कुछ ना कुछ संस्कार स्वभाव का टक्कर होता है, याद और सेवा का बैलेंस नहीं होता है। और माताएं बताएं, संग दोष से भी लीकेज होती है। और उधर आप सब ना एक्चुअली इधर देखो, छोटा सा ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप तो है नहीं, तो बीच बीच में आ जाओ, ताकि ना इधर बीच में आ जाओ, सब उठ के आ जाओ। देखो हमें सबको ना आपस में चर्चा करनी है, आप सभी अनुभवी है ना, बीच में आ जाओ। माताएं भी सब उठ के इधर बीच में आ जाओ, इधर उठ के आ जाओ, इधर उठ के आओ सभी माताएं, साइड में बैठी माता इधर उठ के आ जाओ, इधर कोनों में कोई नहीं बैठे, उधर को इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ जी, चलिए हम सभी दोबारा से एक मिनट बाबा को दोबारा से याद करते हैं, बहुत पावरफुल, ताकि बाबा जो हमसे एक्यूरेट चाहता है उसको हम एक्यूरेटली समझ सकें और फिर उसको फॉलो कर सकें। चलिए एक मिनट फिर से बाबा को याद करते हैं, ऐसे ही व्हाइट लाइट में करेंगे, बहुत पावरफुल याद करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, और उसके बाद फिर हम इस पे चिंतन करेंगे कैसे हम इस लीकेज को बंद करें और रॉयल अलबेलापन को खत्म करें। ओम शांति। देखिए लीकेज जो शब्द है, लीकेज शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है, लीकेज माना कुछ जैसे एक मटका है, मटका है उसमें ऊपर से पानी डालो और नीचे अगर छेको तो क्या होता है, ऊपर से पानी डालते रहो और नीचे निकलते, कभी मटका भरेगा। तो अगर हमारे अंदर लीकेज है तो हम कितना मर्जी पुरुषार्थ करते रहें, अमृत वेला करें, मुरली सुने, अटेंशन भी रखें, चार्ट भी भरें, मर्यादाओं का पालन भी करते रहें, 4 बजे के बजाय 2 बजे उठ के योग भी करें, तो भी कभी हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते। लीकेज माना, लीकेज कहां लीकेज होती है, बुद्धि में लीकेज, जो बुद्धि है ना, ये ज्ञान जो बाबा ने हमें बुद्धि में भरा है, हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर ये ज्ञान भर दिया है बाबा ने। और मुरली भी कहां जाती है, बुद्धि में जाती है। दृढ़ता भी कहां रखते हैं हम लोग, बुद्धि में रखते हैं। शक्तियां भी कहां पर होती हैं, बुद्धि में है। ज्ञान भी बुद्धि में है, पवित्रता भी बुद्धि में है, शांति भी बुद्धि में है, रूहानी प्रेम भी बुद्धि में ही होता है, खुशी भी बुद्धि में ही होती है, आनंद और शक्तियां, आठों शक्तियां बुद्धि में ही होती हैं। अगर बुद्धि में लीकेज हो जाए तो क्या होगा? जैसे मटके में छह कोने पर पान कभी भरता नहीं, तो हमारी बुद्धि कभी भी संपन्न नहीं बन सकती है, कभी भी सोलह कला संपूर्ण नहीं बन सकती है। बुद्धि में ही गुण भरते हैं, हम कभी सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे, सोलह कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, अहिंसा प्रमोद धर्म नहीं बन सकते। अर्थात हम अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। अब चेक करें लीकेज होती क्यों है और कैसे होती है। लीकेज होने के तीन मुख्य कारण हैं। या तो कहीं पर हमारा लगाव है, या तो झुकाव है, या तो टकराव है। तीन बातें, लगाव, झुकाव या टकराव, तीन बातों से मुख्य लीकेज होती। जैसे हम जिसके अंदर बुद्धि में लगाव है, झुकाव है या टकराव है, तो क्या होगा? वो ये हम जब अमृत वेला करने बैठेंगे ना, तो क्या होगा? बुद्धि कहां जाएगी? जहां लगाव होगा। बैठे अमृत वेला करने, बैठे मुरली सुनने, सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शनी भी समझा रहे हैं, कि तो बुद्धि बार बार कहां जा रही है? जहां लगाव है। एकाग्रता से हम ना सेवा कर सकते हैं, ना अमृत वेला बाबा को याद कर सकते हैं, ना एकाग्रता से मुरली सुन सकते हैं, ना हम चाट में भी ईमानदारी नहीं होगी, फिर लगाव होगा ना, तो सच्चाई सफाई नहीं होगी। तो लगाव वाला जो है, लगाव, झुकाव और टकराव, जिससे टकराव होगा वो भी बार बार याद आता रहेगा, जिससे टकराव होगा ना, इससे ईर्ष्या होगी, थोड़ी सी द्वेष होगा, वो व्यक्ति ऐसे करता है, वो व्यक्ति ऐसे करता है, जिसकी तरफ बुद्धि झुकती है, झुकाव होगा, बार बार बुद्धि याद आती रहेगी, उसमें बुद्धि में वही याद आता रहेगा, बाबा की बजाय वो याद आता रहेगा। 45 मिनट अमृत वेला करेंगे, उसमें से 25 मिनट वो ले जाएगा, लगाव झुकाव टकराव वाला, 25 का 35 मिनट, 35 मिनट ले चले जाते हैं उसमें, ऑटोमेटिक उसकी याद आ जाती है। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो 45 मिनट से 35 मिनट तो उसमें ही चले गए, 10 मिनट किसके बाबा को मिले, है ना? वो भी क्वालिटी वाली याद नहीं, पावर वाली याद नहीं, कच्ची पक्की याद। मुरली में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, किंतु बुद्धि में वो आ रहा है, तो क्या होगा? बाबा की मुरली याद नहीं रहती है फिर, क्योंकि मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होता है। तो ये मुरली देखो तो बाहर मुरली सुन रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, किंतु बाहर गए तो क्या होता है? बाहर जाके सोचो मैंने आज मुरली में क्या सुना, याद आता है फिर? एकदम बुद्धि से उड़ जाता है, क्योंकि बुद्धि में लगाव झुकाव टकराव की बीमारी लगी हुई है, उसी कारण लीकेज होती रहती है। अब लगाव झुकाव टकराव होता कहां पर है? जो यहां पर संडे को थे, संडे को जो थे हाथ उठाओ, जिन्हें संडे को मुरली सुनी, परसों, कल ही तो थे ना, कल ही संडे था ना, कल ही तो संडे था ना, कल मुरली सुनी ना यहां पर, तो जो कल की मुरली थी, तो बाबा ने बताया ना मुख्य बात का क्या है, जो बाबा ने बताया सर्वस्व त्यागी है ना, ब्रह्मा बाबा के समान, तो सबसे मुख्य बात है पुराना स्वभाव संस्कार। लगाव जो है हमारा सबसे ज्यादा कहां होता है? या तो अपनी देह से लगाव होता है ना, देह से लगाव होता है ना, देह के संबंधों में लगाव, बच्चों से लगाव, पति से लगाव, पत्नी से लगाव, भाई बहनों से लगाव, जो अच्छा लगता है उससे लगाव, जो हमारी महिमा करता है उससे लगाव, है ना। तो देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, जो हमारा मकान है, हमारी प्रॉपर्टी है, या हमारी कुछ चीजें हैं घर में, उनसे भी लगाव रहता है, लगाव झुकाव रहता है। और जो ये तो लगाव झुकाव जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमें वैल्यू देते हैं, और जो हमारी बुराई करते हैं उनसे, जो हमें दुख देते हैं वो हमसे, उनसे टकराव। तो ये जो लीकेज, अब निकालें कैसे इसको, ये बात क्लियर हुई है आपको? लगाव झुकाव टकराव क्यों होता है, इससे फिर लीकेज होती है। लीकेज किस कारण से? लगाव झुकाव टकराव के कारण। और लगाव झुकाव टकराव किस कारण से? चार बातों के कारण। पहला देह, अपने आप को देह समझना, अपनी देह से बहुत लगाव है, कुछ जरा बीमारी हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, कुछ और कहीं चोट लग जाए, कहीं कोई दर्द हो रहा है ना, खींचती है ना देह, खींचती है, नहीं खींचती है, हार्ट की बीमारी हो गई, कुछ और बीमारी हो गई, तो अपनी देह से लगाव होता है, बहुत लगाव, बहुत झुकाव भी होता है देह की तरफ, और देह के संबंधों की तरफ बहुत लगाव और झुकाव होता है, देह के पदार्थों की तरफ भी बहुत लगाव झुकाव होता है, और देह के पुराने स्वभाव संस्कार। अच्छा, देह के स्वभाव क्या है और देह के संस्कार क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ हमें क्लियर होना चाहिए। हम तो बोल तो देते हैं स्वभाव संस्कार, स्वभाव क्या है? स्व माने आत्मा, भाव माना भाव, तो एक्चुअली स्वभाव का मतलब है आत्मिक भाव, किंतु देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव है पांच विकार। जैसे अगर आप अपने को आग के पास ले जाओ तो क्या लगेगा, क्या महसूस होगा? गर्मी लगेगी ना, गर्मी महसूस होगी। और पानी के पास ले जाओ तो क्या लगेगा? ठंडक लगेगी, ठंडी हवा लगेगी। ऐसे ही जब भी अपने आप को देह समझते हैं तो ऑटोमेटिक है, आपको ये नहीं सोचना पड़े कैसे आएगा, अपने आप को देह समझते ही काम विकार आएगा। देह का स्वभाव है काम विकार आना, देह की तरफ आकर्षित होना, देह की तरफ लगाव जाएगा, अपनी देह की तरफ दूसरे की देह की तरफ लगाव जाएगा, बुद्धि उसमें जाएगी जरूर, इसके नयन नक्श कैसे हैं, ये कैसा है, ये कैसी है ना, तो देह का स्वभाव है काम विकार, देह का स्वभाव है क्रोध। देह अपने को समझेंगे, दूसरे को देह समझेंगे, अपने को देह समझते दूसरे को भी देह समझते हैं ना, फिर तो जैसे मेरी, जैसा मैं अपने आप को समझता हूं, मुझे दूसरे भी वैसे नजर आते हैं ना, तो देह का स्वभाव है काम विकार, क्रोध, लोभ, ये देह का स्वभाव है। अपने को देह समझा, लोभ आएगा, जब मैं देह हूं तो मुझे पहनने को चाहिए, खाने को चाहिए, सोने को चाहिए, संभाल के लिए, फ्यूचर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, ऑटोमेटिक लोभ आएगा, वो देह का स्वभाव है मोह, मोह ऑटोमेटिक जाएगा देह वालों की तरफ, जो मेरे संबंधी हैं, जो मेरी केयर करते हैं उनकी तरफ मोह जाएगा। और अहंकार, ये पांच जो है ये देह के स्वभाव है, तो देह समझा, देह के संबंधों की तरफ बुद्धि गई, तो ऑटोमेटिक है कि हमें हमारे अंदर ये देह के स्वभाव संस्कार आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। और देह के संस्कार कौन से हैं? संस्कार जो है आलस, ये देह का स्वभाव है आलस करना, मैं थक गया, मैं थक गई। अपने को आत्मा समझ के हर काम करो तो थकावट होगी क्या? अपने सोल कॉन्शियस होके रहो। बाबा ने कहा था एक बार कि अगर बाप से लिंक जुटी है, अपने को आत्मा समझते हैं और बाप से लिंक जुटी है, तो तीन निशानियां हैं। कौन कौन सी निशानी है? अथक, पहली निशानी अथक, जो अपने को आत्मा समझता है वो कभी थक नहीं सकता है, कितना मर्जी काम करे, कितनी मर्जी सेवा करे, दिन और रात सेवा करे, उसको थकावट महसूस नहीं हो सकती है। और जिसकी लिंक बाबा से जुड़ी है, क्योंकि अपने को आत्मा समझा तो लिंक ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है, देह समझा है, देह के संबंध में बुद्धि गई तो ऑटोमेटिक बाबा से लिंक टूट गई। तो अगर मेरी लिंक जुटी हुई है तो ये ऑटोमेटिक है कि मेरे को कभी थकावट नहीं, अथक, अटल, जो निश्चय किया ना अटल, वो पूरा करना ही है, सेवा करनी, जो सेवा का निश्चय या किसी भी बात का निश्चय किया, 3:30 बजे उठना है, बाबा को याद करना है, मुरली सुनने जाना है, नाश्ता करने के पहले मुरली जरूर सुननी है, बगैर मुरली सुने नाश्ता करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो, कहीं भी क्यों ना हो, जो धारणा की है पवित्रता की वो पक्की करनी है। शुद्धन कहीं कुछ सब कितना भी अच्छा खाना हो, कितनी भी टेम्पटेशन हो, कभी भी बाहर का खाना स्वीकार नहीं करना है। सत्संग निरंतर बाबा की मुरली और बाबा का संग करना ही है, दैवी गुण धारण करना ही है। अगर ये पक्का है, जिसका जो अपने को आत्मा समझता है उसके अंदर ये अटल रहता ही है वो हमेशा, और अटूट, कभी टूट नहीं सकता है। तो तीन निशानियां हैं, अथक, अटल और अटूट। तो ये बात क्लियर हो गई सभी को कि लगाव तो देह का स्वभाव है, ये पांच विकार और देह के संस्कार क्या, पहला है आलस्य, दूसरा है अलबेलापन। एक्चुअली ये दोनों विकार, दोनों बातें ना, जो देह के संस्कार जो पैदा होते हैं, संस्कार कैसे पैदा होते हैं, जो चीज हम बार बार करते हैं ना वो हमारा संस्कार बन जाता है। और ये आलस अलबेलापन पैदा कहां से होता है, इसका जन्मदाता कौन है, कौन, इसका जन्मदाता है काम विकार। काम विकार से आलस और अलबेलापन का जन्म होता है। और फिर आलस और अलबेलापन अगर बुद्धि में आ जाए तो फिर इससे काम विकार वापस पैदा हो जाता है। आप थोड़ा आलस कर लो एक दिन, आज अमृतवेला छोड़ो, आज क्या करते हैं, आज रात को देर से सोए थे ना, रात को 12 बज गए थे सोते सोते, आज तो फिर दिन में काम करना, आज अभी 4 बजे अमृतवेला छोड़ो, 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ के अमृतवेला कर लेंगे, देखो फिर क्या होगा। आप लेट जाओ, देखो कहां 20 साल तक कोई सपना भी नहीं आया होगा, गलत 20 वो सपने वापस आने शुरू हो जाएंगे, काम विकार के सपने आ जाएंगे। अलबेलापन, अगर आपने थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में अमृतवेला मुरली खान पान में कहीं भी कोई थोड़ी दिनचर्या में ऊपर नीचे अलबेलापन किया ना, देखो काम विकार आ जाएगा। तो आलस और अलबेलेपन का जन्मदाता ही काम विकार है। इसलिए जो विकारी होते हैं ना, कामी व्यक्ति होते हैं ना, कामी मनुष्य होते हैं, वो आलसी होते हैं, देर से सोना देर से उठना, और केयरलेस होते हैं, कि अपनी जो वचन देते ना किसी काम का भी कभी पूरा नहीं कर पाते, केयरलेस होते हैं। फिर दूसरे जो संस्कार हैं, देह के संस्कार हैं, वो कौन से हैं, दूसरे में दोष निकालने की आदत। जो ये देह का संस्कार है, अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरे में दोष निकालते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, और बदला लेने की भावना, ये दूसरा संस्कार है। इनका जन्म क्रोध से होता है, इन दोनों का संस्कार जन्म क्रोध से होता है। फिर जो और संस्कार हैं देह के, वो हैं शक और अनुमान। शक करने का संस्कार हो जाता है, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा करता होगा, वो नहीं आया तो उसके पीछे ये कारण है, अपना अंदाजा लगा लेना, अनुमान लगा लेना। ये बहुत गहरे हैं, सूक्ष्म हैं, बहुत गहरे हैं। कई बार कहते ना, कल की मुरली में था ना, जैसे बाबा ने कहा दादा दादी तो शीतल हैं, बड़े बूढ़े तो शीतल होते हैं, पोतरे धोतरे कैसे होते हैं, कल बाबा की मुरली में था ना, जो अंश तो जो है ना, जो पूरे जो विकार हैं वो तो फिर भी मतलब हमने कंट्रोल कर लिए, किंतु जो उसके वंश है ना वो ज्यादा खतरनाक है। तो कहते हैं शक अनुमान जो है, 95% जो हम शक अनुमान लगाते हैं ना गलत होते हैं। आप चेक करके देखो, किसी ने आपको पूछा नहीं, किसी ने आपको, वो व्यक्ति आया नहीं, आपने सोचा उसने ऐसा इसलिए नहीं आया होगा, इसलिए नहीं किया होगा, देखो अंदाजा लगा के देखो, रियलिटी देखो, गलत होंगे आप। ये इसका जन्म लोभ से होता है। लोभ जो है ना, लोभ कोई खाली पैसे का लोभ नहीं होता, नाम मान शान का भी लोभ होता है। मुझे लोग पूछें, है ना, तभी क्या कहा गया, बंदर कहा गया ना, महावीर के भी पूछ होती है ना, जब तक पूंछ को आग नहीं लगी तब तक लंका जली क्या, जब पूंछ को आग लगी तो फिर लंका जली, है ना। बाबा की मुरली में भी एक बार आया था कि महावीर की जब महावीर जब तक अपनी पूंछ को नहीं जलाएंगे तब तक रावण की लंका जलेगी नहीं। ये जो नाम मानचन की इच्छा है ना, ये बहुत खतरनाक है, कभी भी संगठन में एकता नहीं पैदा होने देती है। और हम एक दूसरे के ऊपर अपने भाई बहनों पर शक करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, तो संबंधों में कभी मिठास पैदा नहीं होती है। अंदर कुछ बाहर कुछ, फरिश्ते कैसे होते हैं? अंदर कुछ बाहर कुछ, कि अंदर बाहर एक समान। फरिश्ते माने ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जब हमारा मन और बुद्धि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अंदर बाहर एक समान, दिल की सच्चाई सफाई, तब हम फरिश्ता बनते हैं। आपको पता है हमारा 95% मन कैसा है? 95% मन कैसा है? 92%। सिर्फ 8% मन हमें पता है हमारे मन में क्या, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या है, सिर्फ हम 8% ही जानते हैं। 92% मन हमारा कैसा है? सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, अब चेतन मन है। हमें नहीं पता हम क्या करते हैं, दूसरे लोग बताते हैं हाँ आप ये करते हो। वो जो 92% अनकॉन्शियस क्यों हो गया? पिछले जन्मों के जो पाप कर्म है ना, वो सारे उस मन में भरे हुए हैं। पिछले जन्म में जो भी पाप कर्म किए ना, 63 जन्मों में, उसके कारण हमारा मन कैसा हो गया है? अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो गया। इस जन्म का सिर्फ 8% ही है जो हमें याद है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, जितना जितना बाबा की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तो हमारा मन कॉन्शियस होता जाएगा। अर्थात हमारी कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है मन के ऊपर, रूलिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं अपने मन में क्या क्या चलता है। ये सपने कहां से आते हैं? सपने कहां से आ रहे हैं? सब कॉन्शियस मन से आते हैं, अनकॉन्शियस मन से आ रहे हैं। तो ये सपने वहां से आ रहे हैं, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन से आते हैं। फरिश्तों को सपने आते हैं क्या? देवताओं को सपने आते हैं क्या? देवताओं का मन 100% कॉन्शियस होता है, फरिश्तों का मन 100% कॉन्शियस होता है। जब मेरा कॉन्शियस होगा तभी तो जागृत होगा, तभी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तभी तो रूल कर सकता हूं। अब जो चीज मुझे पता ही नहीं है, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? जिसको मैं जानता ही नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम? बताइए, जिसको हम जानते नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो जितनी जितनी तपस्या करते जाएंगे, उतना उतना हमारा क्या होता जाएगा, मन। जैसे पहले तो 8% मन भी गंदा है, उसको पहले सफाई करो। जब 8% सफाई करेंगे तो क्या होगा? फिर नीचे से और निकल आएगा, फिर उसके नीचे वाला मन साफ करो, और 8%, फिर वो साफ हो जाएगा, फिर उसके नीचे और निकल आएगा। जैसे कचड़े का डब्बा होता है ना, तो पहले ऊपर का कचरा निकालो, फिर क्या होगा? नीचे क्या निकलेगा? नीचे भी फिर कचरा निकलेगा। फिर वो निकालो तो फिर उसके नीचे और कचरा निकलेगा, फिर और निकालो तो और निकलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डब्बा साफ हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमारा मन है, फरिश्ता बनने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा, कई बार हम लोग योग लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा योग लगता है, बहुत अच्छी स्थिति लगती है, लगता है अभी फरिश्ता बनने वाले। और एक दिन स्थिति अच्छी रहती है, और फिर दूसरे दिन क्या होता है? फिर स्थिति डाउन हो जाती है, मन में अचानक ही दुख की फीलिंग आने लगती है। सोचते हमने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी ऐसा क्यों फीलिंग है, क्यों फीलिंग ऐसे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम रिटर्न जर्नी पर हैं। जैसे हम बाबा के याद करना शुरू करते हैं, हम अभी ज्ञान में आए, 83वें जन्म में, पहले तो 84वें जन्म, मतलब बाबा का बनने के बाद जो पाप कर्म किए वो हम भस्म करते हैं योग से, बाबा की याद से, श्रीमद से। फिर हम 83वें जन्म के पाप कर्म भस्म करते हैं, उल्टे चलते हैं हमेशा, पहले बुढ़ापा आता है, फिर जवानी आती है, फिर बचपन आता है। तो ज्यादा पाप कभी होते हैं? ज्यादा पाप बुढ़ापे में होते हैं, जवानी में होते हैं कि बचपन में होते हैं? जवानी में होते हैं ना, तो बुढ़ापे का थोड़ा पीरियड अच्छा होता है, तो वो टाइम हम शांति से निकलता है। फिर जवानी में जब पाप का समय उल्टा चलता है ना, अभी उल्टा चल रहा है ना समय, तो वो पाप का समय जब होता है ना, तो हमारा मन उदास उदास रहता है, हम अंदर से पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं। जब वो पाप कट जाते हैं तो फिर बचपन आ जाता है, तो बचपन के समय हमने कोई पाप नहीं किए थे, तो थोड़ी सी खुशी आती है। फिर वो जन्म खत्म हो गया 83वां, फिर 82वां शुरू हो गया। तो 82 का पहले बुढ़ापा आएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर जवानी का समय आएगा, फिर खराब लगेगा, फिर बचपन आएगा, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे हमारी स्थिति, फिर 81वां जन्म आ गया, फिर बुढ़ापा, जवानी, बचपन, है ना, फिर वो पूरा हुआ, फिर क्या होगा, फिर 80वां आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग, ये जो हमारी जो यात्रा है ना, ये उल्टी यात्रा है। पढ़ा ना पापा ने अपनी मुरली में, सुना होगा ना, हम रिटर्न जर्नी पर है। तो ऐसे जिनकी पावरफुल योग है ना, बहुत पावरफुल योग है, श्रीमत पे 100% पक्के हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान में, योग में, धारणा और सेवा में एक्यूरेट चलती है, बुद्धि में बाबा के सलाह किसको रखा नहीं है, तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी अपने विक्रम विनाश करते, जैसे जल्दी जल्दी करते करते 35वें जन्म पे जैसे पहुंच गई। और 35वें जन्म में मान लीजिए मेरा किसी के साथ कोई संबंध था, मतलब जिस आत्मा के साथ, अच्छा वो संबंधी भी हमारे आसपास है, ये भी आपको पता रहे कि जितने भी संबंधी है ना पिछले जन्मों के, हमारे पिछले जन्म में भी हमारे कोई कोई बच्चा रहा होगा, कोई पत्नी रही होगी, कोई पति रहा होगा, कोई भाई बहन रहे होंगे, माता पिता रहे होंगे, है ना, वो सब हमारे आसपास हैं, हमारे ही घर में है कुछ, कुछ हमारे पड़ोस में है, कुछ हमारे जहां बिजनेस करते हैं वहां पर है, सबके सब वहीं आसपास हैं, कुछ लोग मधुबन में भी होंगे आपके, है ना, तो वो सब संबंधी आसपास हैं। और फिर संबंध बदलते रहते हैं, फिर वो व्यक्ति जब जब उसके साथ संबंध होने होता है ना, तो वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, और उसके सामने आकर के अगर हमने उसके उसके कारण ये किसी को जरा अपनी बुद्धि में लगाव झुकाव टकराव रखा, तो बुद्धि क्या होगी, उसके उसमें फंस जाएगी। जिसे कई बार मैं अपने कंपेयर करता हूं, जैसे कोई आग का दरिया होता है ना, आग का दरिया, आग जली हो बहुत सारी, और उसमें से जाना हो आपको तो कैसे जाना चाहिए, कैसे जाएंगे, फायर प्रूफ ड्रेस पहन के जा सकते हैं। और ये बाबा की याद और श्रीमत फायर प्रूफ ड्रेस है, क्योंकि हम पिछले जन्मों से वापस हमारी रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हमको अगर हम बाबा की याद और श्रीमत का फायर प्रूफ ड्रेस पहनी हुई है, तो हम इन पिछले जन्मों में जो जो हमने गलत काम किए, जिनके साथ किए हुए हैं, उनके साथ संबंध संपर्क में आते, हम फंसते नहीं है, हम जलते नहीं है, हम दुख महसूस नहीं करते हैं, बाबा की याद में अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करते करते शांति के झूले, प्रेम के झूले, सुख के झूले, वृत्ति के तख्त नशीन बनकर के बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हुए, उसी नशे में रहते हुए, उसी निशाने को पक्का करते हुए, हम ये यात्रा बहुत सहज कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी विक्रम विनाश करते 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 हम 21वें जन्म तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन हम 21वें जन्म में पहुंच जाएंगे, मतलब त्रेता की स्टेज में पहुंच जाएंगे, हमें दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी, हमारी स्थिति एकरस हो जाएगी, हमारे अंदर कोई विकार रहेगा नहीं, और हम फरिश्ते बन जाएंगे। किंतु जरा भी अटेंशन टूटी, जरा भी हमने बाबा की याद का साथ छोड़ा, श्रीमत रूपी हाथ छोड़ा, तो क्या होगा, ये जो आग के दरिया में हम जल जाते हैं, जल जाते हैं, माना जलने का मतलब है हम किसी ना किसी के चक्कर में फंस जाते हैं, चक्कर या टक्कर, है ना, या तो किसी चक्कर में आ जाते, किसी टक्कर में आ जाते, या तो किसी के लगाव में जब फंस जाते, या टकराव में फंस जाते, और फिर वहीं पर ही मान लीजिए मैंने अभी मैं ज्ञान में आए 5 साल पहले, ज्ञान में मान लो आए 5 साल में मैंने 60 जन्म के पाप काट दिए, बहुत फास्ट पुरुषार्थ किया, बहुत फास्ट किया, 24वें जन्म में पहुंच गए, फिर किसी के लगाव में आ गए, टकराव में आ गए, अब क्या हुआ, 24वें जन्म में उसके लगाव झुकाव टकराव में आए, तो क्या होगा, अगले 10 साल 15 साल 15 साल उसी में चले गए, अगले 15 साल में 24 जन्म में पढ़ाऊं, आगे आगे यात्रा रुक गई है, खुशी गायब हो गई है, उदासी आती है, फीलिंग आती है, आगे प्रगति होनी बंद हो गई है। तो हमको ये चेक करना है। और कई बार फिर 24 से हम क्या हो गए, 24वें जन्म में आ गए थे, फिर गलतियां करते हैं उसके साथ, तो वापस कहां आ गए, सांप सीढ़ी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल है ना, तो कहां पहुंच गए, 24 से वापस कहां पहुंच गए, 84वें में आ गए। अब वापस यात्रा शुरू करो 84 से, ऐसा होता नहीं होता है बताओ, ऐसा होता नहीं होता है, ये ठीक, ये मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बराबर बात है ये, है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकल में होता है, क्योंकि आप सब अनुभवी हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, बातें डिस्कस कर रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि एज ए डॉक्टर जब आप बाबा के, जब क्योंकि मुझे सेवा में मेरी एज ए डॉक्टर जो बाबा ने सेवा दी है, हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में सेवा दी है, क्योंकि सब पेशेंट्स आते हैं ना, जब बाबा के बच्चे भी आते हैं और नॉन बीके भी आते हैं, तो जब उनकी बातें सुनते हैं, बताते हैं अपनी कि आपको हार्ट की बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, तो बताते हैं कैसे कैसे हम बीमार हुए। तो ये बात समझे, देह का स्वभाव और देह का संस्कार कौन सा, ये मैंने बताया, आलस, अलबेलापन और दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान और चिंता। चिंता भी संस्कार है, आदत पड़ गई चिंता करने की, कभी चिंता ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, क्या आज को चिंता क्यों नहीं है, है ना। ये संस्कार है, देह का संस्कार है चिंता करना, भय लगना भी देह का संस्कार है, जल्दीबाजी करना भी देह का संस्कार है। ये चिंता और भय मोह से पैदा होते हैं, और जल्दीबाजी और ईर्ष्या ये अहंकार से पैदा होते हैं। तो 5 जो हमारे स्वभाव हैं, देह के स्वभाव, और 10 संस्कार हैं मोटे मोटे। तो देह के स्वभाव संस्कार का त्याग करना ये तभी पॉसिबल है जब अपने साथ हम चिंतन करें, अपनी बुद्धि को चेक करें, अपने आप से बात करें। इसका तरीका यही है कि 4 बातें हम अपने आप को चेक कर लें, और बाबा के ये महावाक्य भी हैं कि पहला, जो पहला महावाक्य पूरा होता है तो दूसरा महावाक्य शुरू होता है। पहला महावाक्य क्या है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल। तो पहले 4 को बुद्धि से भूलना पड़ता है। लीकेज बंद करने का साधन बता रहा हूं आपको, लीकेज कैसे बंद करें, इनको बुद्धि से भूलो। बार बार अपने आप से बात करें हम कि मैं कौन हूं। आखिरी पहली और पहली पहली कौन सी है हमारे यज्ञ की, ज्ञान की कौन सी है, मैं कौन हूं, है ना। तो ये जो इसको बहुत गहराई से चिंतन करें। कई बार मैं सोचता, जैसे मैं चिंतन करना शुरू करूं तो मैं क्या सोचूंगा, नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर गुप्ता हूं, मैं गुप्ता हूं, सतीश गुप्ता हूं, फिर मैं डॉक्टर ना करूं, सतीश गुप्ता तो मेरा नाम नहीं है। अपने आप से बात करें, ये मेरा नाम, ये तो मेरे शरीर का नाम है। अच्छा मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर तो मैं प्रोफेशन है मेरा, ये तो अभी मैं 30 साल से बना हूं, उसके पहले तो डॉक्टर नहीं था, और डॉक्टर भी सारा दिन तो नहीं हूं। जैसे आप कहेंगे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बाप हूं, मैं तो मां हूं, मैं तो पत्नी हूं। पत्नी कब से है आप, मां कितने साल से है, सबकी मां है क्या, 1-2 बच्चों की मां होंगी ना। तो ये तो हमारा रोल है, मैं कौन हूं, ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा ना। ऐसे अपने आप से गहराई से बात करने की आवश्यकता है। कई बार हम ऐसे करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे करने से कभी हमारा योग लगेगा नहीं, कभी लीकेज बंद नहीं होगी। ये चलते फिरते अटेंशन करने की आवश्यकता, अपने आप से बात करने की आवश्यकता है। जितना हम अपने आप से ये बात करते हैं, गहराई से बात करते हैं, उतना गहरा गहरा हमारे अंदर ये बैठता जाता है कि मैं कौन हूं। फिर जब मैं आत्मा हूं तो मेरे संबंध किसके साथ हैं, इनके साथ नहीं, संबंध मेरे, क्योंकि सब लेने वाले हैं, जितने भी, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, पति हो, ये सब लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, सबको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, कोई देने वाला है क्या? देने वाला सिर्फ एक बाबा है। तो मेरा असली संबंधी कौन है? वो है। और ये अपने आप से बहुत गहरे से रियलाइज करने की आवश्यकता है, हम में से हर एक को बहुत गहरे से रियलाइज करने की आवश्यकता है। एक एक संबंध को, मां का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, टीचर का संबंध क्या है, सतगुरु का संबंध क्या है, भाई का संबंध क्या है, दोस्त का। चलो, तो हमसे बाप से बात कर रहे थे कि अपने लीकेज को बंद करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है इन चारों बातों के लिए अपने आप से बात करें। तो देह के संबंध किसके बजाय, मैं आत्मा हूं तो मेरे संबंध उसके साथ है, और मेरे स्वभाव संस्कार क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये सात गुण, ज्ञान, मेरा स्वभाव है ज्ञान, ज्ञान माना ABCD, ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन मतलब मेरे संबंध उसके साथ है, डी फॉर ड्रामा अर्थात ये संसार एक नाटक है, इस नाटक में हर आत्मा का अपना पार्ट है, सब एक्टर्स हैं, शिव बाबा इसका डायरेक्टर है और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। अगर मैंने किसी को दुख दिया हुआ है तो वो मुझे दुख देगा, भले मेरा बेटा बेटे के रूप में देगा, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पड़ोसी के रूप में, और सुख दिया तो सुख देगा, सुख मिलेगा, जैसे कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है, मैं डायरेक्टर नहीं हूं। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम घर में बड़े होते हैं ना तो समझते हैं डायरेक्टर हम हैं, कि बच्चे को मेरी बात माननी चाहिए, पत्नी को मेरी बात माननी चाहिए, पति को मेरी बात माननी चाहिए, है ना। मेरे नीचे नौकर काम, जो सर्वेंट काम करते हैं, मेरे ऑफिस में काम करते हैं लोग, मेरे बिजनेस में, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, सबको मेरी बात माननी चाहिए, वो मेरी डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, वो डायरेक्टर की डायरेक्शन में चलेंगे। वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूं, कभी एक्टर एक्टर की बात मानता है क्या? एक्टर एक्टर की बात नहीं मानता है, डायरेक्टर की बात मानते हैं। तो डायरेक्टर वो है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि डायरेक्टर मेरा बाबा है ना, वो कभी गलत कर डायरेक्शन नहीं देगा, इसलिए जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने। तो ये जो है, ये मेरा, ये ज्ञान, ये मेरा स्वभाव है। इसी ABCD में रमण करना, इसी ABCD का चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, ये मेरा स्वभाव है। पवित्रता मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है। शांति माना कम से कम विचार करना। शांति का मतलब क्या है? ज्यादा विचार हो जाए तो अशांति हो जाती है, और कम विचार हो जाए तो शांति। कैसे विचार? पॉजिटिव विचार शांति पैदा करते हैं, कम होते हैं ना तो शांति होती है, और नेगेटिव विचार बहुत फास्ट होते हैं, ज्यादा होते हैं तो अशांति होती है। तो शांत, मुझे शांत रहना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। इस ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है, फिर शांति से प्रेम पैदा होता है कि हम सब आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं, गलती मेरे से भी होती है, इनसे हुई तो क्या बड़ी बात है, है ना? तो उल्टा रहम आना चाहिए, किसी गलती हो जाए तो, गिर जाए तो कोई क्या करना चाहिए, उसको एक ठोकर लगानी चाहिए क्या? रहम आना चाहिए, मेरा भाई गिर गया, मेरी बहन गिर गई तो क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, है ना? तो प्यार आता है, प्यार से सुख पैदा होता है, सुख से आनंद आता है, आनंद से शक्तियां आती है। तो ये मेरे स्वभाव है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, ये सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में, इसी ज्ञान से, बाबा भी ज्ञान का सागर पहले है, फिर पवित्रता का, फिर पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, फिर शांति का सागर है, फिर प्रेम का सागर है, फिर सुख का सागर, फिर आनंद का सागर, फिर सर्वशक्तिमान है। तो ये मेरे स्वभाव है। संस्कार क्या है मेरे? मेरे संस्कार है वैल्यूज, वैल्यूज माना इन सातों गुणों से मिलके कुछ वैल्यूज बनती है, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, दृढ़ता, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये मेरे संस्कार है। मैं आत्मा हूं तो मेरे संस्कार ये हैं, वो नहीं चिंता, भय, शक, अनुमान, दूसरे में दोष निकालना, आलस, अलबेलापन, मेरा संस्कार नहीं है। मैं आत्मा हूं तो ये अपने आप रियलाइज होगा। तो इसलिए बार बार चिंतन यही करना है, मैं आत्मा हूं, कौन हूं मैं? चमकता सितारा हूं, मैं वृक्ष पे बैठा, बाबा ने जो पहली पहली मुरली चली ना, मैं भ्रुक्ति तक नशीन हूं। अगर भ्रुक्ति तक नशीन हूं तो परमात्म दिल तक नशीन हूं, और परमात्म दिल तक नशीन हूं तो भविष्य में राज्य तक नशीन हूं। इसी झूले में झूलते रहना, शांति का झूला, कभी ज्ञान का झूला, कभी पवित्रता का झूला, कभी शांति का झूला, कभी प्रेम का झूला, कभी सुख का झूला, कभी आनंद का झूला, कभी शक्तियों के झूले, इसी में झूलते रहो। जब इस झूले में जब तो बाबा की गोदी का अनुभव होता रहेगा, फिर देहभान और देहभान की मिट्टी देहभान में देह विमान में नहीं आएंगे, उस मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे। तो जितना इसी गहराई में जाते जाएंगे, जितना गहराई में जाते जाओ उसी में डूबते जाओ। तो ये मेरे स्वभाव संस्कार है, और देह के तो इसको बार बार रियलाइज करें। तो जितना अपने आप से बात करते जाएंगे तो ये लीकेज खत्म होती जाएगी ना, फिर लगाव कहां हो जाएगा सारा बाबा के साथ, झुकाव कहां हो जाएगा बाबा के तरफ, और टकराव तो किसी से होगा ही नहीं। अब अलबेलापन, रॉयल अलबेलापन क्या है? रॉयल अलबेलापन दो कारणों से होता है। पहला कारण है या तो कहते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या कहते इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। या तो हमारे अंदर होता है हम तो बहुत बहुत होशियार हैं, हम तो सारा जीवन बहुत नंबर वन आते रहे, बाबा के ज्ञान में भी ऐसे नंबर वन आ जाएंगे, है ना। ये धारणा तो मेरी पहले से, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया हुआ है ना, मियां मिट्ठू बनते हैं अपने आप को बहुत, है ना। तो उसके कारण भी अलबेलापन, जैसे कहते हैं ना खरगोश और कछुए की कहानी है ना, खरगोश कहता है ना मैं तो बहुत जल्दी दौड़ के पहुंच जाऊंगा, सो जाता हूं, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है ना। हुआ क्या अंत में, क्या हुआ? खरगोश सोता रह गया और कछुआ मंजिल पे पहुंच गया, है ना। तो ये भी हमारे अंदर कई बार, इसके कारण भी अलबेलापन आता है। तो ये नहीं, रोज का अभ्यास, क्योंकि जन्मों के पाप हमारे सिर पे हैं, 63 जन्मों के पापों का बोझा हमारे सिर पे है, और अब बाबा का बनने के बाद जो कुछ हम गलत काम करते हैं उसका 100 गुना का दंड पड़ता है। तब तो 1 गुना का था, और अब बाबा का बनने के बाद 100 गुना। मैंने एक गलती की, 100 गुना उसका नुकसान हो गया, कमाई भी 100 गुना तो नुकसान भी 100 गुना। पहले हम किरियाना मर्चेंट थे, किरियाना मर्चेंट समझते हो, छोटी दुकान होती है ना, परचून की दुकान होती है, उसके मर्चेंट थे। नुकसान भी 100 रुपए का और फायदा भी 100 रुपए का। और अभी क्या होता है, अभी हीरे के व्यापारी बन गए, तो नुकसान कितने का, फायदा लाखों में तो नुकसान भी लाखों में होता है, नहीं ऐसा? तो अभी हमको बहुत सोच समझ के ये 8 शक्तियां प्रयोग करके, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, मतलब पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाने की शक्ति, बिंदी लगाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियों को यूज करके फिर हमें कर्म करना है, तब हमारे कर्म एक्यूरेट होंगे, नहीं तो कर्म हमारे एक्यूरेट नहीं होते हैं, आगे पीछे होते जाते हैं। तो ये जब हम ध्यान रखेंगे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कछुए की तरह से निरंतर और सतत, स्लो एंड स्टडी, अमृतवेला, मुरली, अटेंशन, हर घंटे में अटेंशन करो। जब पानी पी रहे हैं, पानी पीते पीते बाबा को याद करो, पानी पीने से पहले बाबा को याद करो। जो बाबा ने कहा 5 स्वरूप का अभ्यास करो, तो 5 स्वरूप का अभ्यास 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लो, अमृतवेला ज्यादा लंबा समय कर लो, फिर दिन में खाना खाते समय कर लो, फिर पानी 8 बार पीते 8-10 तो 8-10 बार कर लो, 3 बार खाना खाते 3 बार खाना, तो 13 बार तो हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना, 3 बार 8 बार पानी पिया, 3 बार खाना खाया तो 11 बार हो गया ना। तो ऐसे बार 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 अभ्यास करते करते ये जो है हमारे अंदर से निकल जाएगा। और दूसरा होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, हम फील करते नहीं हमारे अंदर, तो देखो हम तो अभी पीछे आए ना, ये जो 60 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, 50 साल से चल रहे हैं, ये पहले जाएंगे ना, हम तो हमारी सीट कहां है, हमारी सीट ही नहीं है, हम कहां लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हमारा तो पद ही नहीं हो सकता है, मेरे तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैं तो बन ही नहीं सकता हूं, मैं तो बन ही नहीं सकती हूं। तो ये भी हमारे अंदर गलत है। बाबा ने कहा ना पीछे, अभी बाबा हर मुरली में बताते हैं, जो भी बाबा आते हैं, अभी भी कल परसों बाबा आएंगे, तो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। ये ऐसा खेल है, चाहे 70 साल के हैं, चाहे 75 साल के हैं, चाहे अभी आए हैं, आज आए हैं, इसमें सब आगे जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई वही है। और इसमें एक चीज और है, मान लीजिए हमने जो पुराने हैं, मतलब 30-40 साल के भी हैं, मान लीजिए वो रोज जमा घटा का हिसाब लगाएं तो उनकी याद की चार्ट रोज आधा घंटा बनता है या 15 मिनट बनता है। गलतियां भी होती रहती हैं, ठीक भी होता रहता है, गलती भी ठीक भी होता रहता है। और हमने अभी से, जब से हम ज्ञान में आए, मान लीजिए अभी चलो पीछे बीती को बीती करें और अभी से हम अटेंशन कर लें 100%, अलबेलापन बिल्कुल ना रखें, आलस्य बिल्कुल ना रखें, अभी से 5:42 से पूरा अटेंशन कर लें और हर मिनट, हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प बाबा की याद करें, श्रीमत पे चलें, तो क्या होगा? आज शाम तक ना, रात 10 बजे तक 70 साल जितना पुरुषार्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये अटेंशन की सिर्फ आवश्यकता है। तो हम लीकेज को भी व्यर्थ अभी चेक करें, और कारण 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 शब्द है ना, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर, कारण शब्द को ना, निवारण शब्द नहीं, बस मुझे करना क्या है, मुझे बस बाबा को याद करना, मुझे श्रीमत पे चलना है, कुछ भी हो। कई बार ये भी हम समझते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे आज का समय ऐसा है कि जैसे शेयर मार्केट होती है ना, शेयर मार्केट में कई शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपए के शेयर आज 10,000 रुपए के हो गए, है ना? और अभी जो बाबा का शेयर है ना, जो बाबा का जो शेयर है, आज भी 10 रुपए का शेयर 5 रुपए का है, खरीदने में 10 रुपए का है और मार्केट वैल्यू क्या है? 5 रुपया। किंतु हमें पता है कि जो दुनिया में जो 10,000 का शेयर हो गया, 10 रुपए वाला 10,000 में हो गया, उसकी वैल्यू 10 पैसे भी रहनी जाएगी अभी थोड़े दिनों में, वो डूबने वाला है, क्रैश होने वाला है। बाबा ने बताया ना, 10,000 वाला कितने पैसे का हो जाएगा? 10 पैसा भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और ये जो 5 रुपए का है ना आज, कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। तो कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, डूबने वाले में या जो चढ़ने वाला उसमें? कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? चढ़ने वाले। तो हमें अभी अपनी समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सारी एनर्जी इसमें लगा देनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टमेंट इसमें कर देनी चाहिए। वो जो हमें पता डूबने वाला उसमें नहीं करनी चाहिए। भले आज बहुत अच्छा लगता है कि तो सब डूबने वाला है। तो क्लियर हो गई ये बात आपको? तो लीकेज क्या है? लीकेज है लगाव, झुकाव, टकराव। और अलबेलापन कहां पर है? या तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लेते हैं या बहुत नीचा समझ लेते हैं, दोनों से बचना है। रियल बात को समझ करके और पुरुषार्थ क्या करना है हमको? अपने आप से बात करनी है, रियलाइज करना है, मैं देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ की बजाय मैं आत्मा हूं, मेरे संबंध संपर्क किसके साथ हैं? वही मेरा सब कुछ है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन सज्जन, सब कुछ वही है। और फिर देह के स्वभाव के बजाय आत्मा का स्वभाव, ये 7 गुण है। आत्मा के संस्कार क्या है? रहम, दिल, कल्याणकारी। और देह के, आत्मा के पदार्थ ये वैल्यूज है। तो इसमें चिंतन करते रहो बार बार। बाबा की मुरली 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। एक बात मेरे को कभी ऐसे अंदर से टच हुई थी कि अगर मुरली हमारा, एक दिन में हम 16,000 श्वास लेते हैं, हमारी दादियों को मुरली रोज श्वासों श्वास याद रहती, जब देखो तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, मीठे बाबा ने ये कहा, उनको श्वासों श्वास मुरली याद रहती। और जो सो की माला में आना चाहते हैं वो दिन में 100 बार मुरली को याद करें, बाबा ने ये कहा, 100 बार उनको याद आना, 1 घंटे में 6 बार याद आवे। और जो 16,000 की माला में आना चाहते हैं वो दिन में 8 बार मुरली रिवाइज करें, 8 दिन में 8 पैर होते हैं ना, तो 8 बार मुरली रिवाइज करें तो 16,000 की माला में आ जाएंगे। और 9 लाख में आने के लिए कम से कम रोज अमृत वेले एक बार मुरली सुननी चाहिए क्लास में जाके, अमृत वेले माना 7 से 8 का समय, तो हम तब 9 लाख में आएंगे। अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट करेंगे तो 1-2 घंटा बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, 1-2 घंटा लेट करते हैं ना मुरली सुनने में, शाम को सुनते हैं तो शाम को आएंगे, मतलब शाम को माना सत्युग की शाम हो जाएगी, 8 जन्म बीत जाएंगे तब आएंगे। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ समय है, अभी बैंक खुली है, जमा करने की बैंक खुली है, इसमें अपना खाता जमा करते जाएं, इन्वेस्ट करते जाएं, समय, श्वास, एनर्जी, संकल्प, बोल, कर्म, सब कुछ इसमें इन्वेस्ट करो, तो ये लीकेज भी खत्म हो जाएगी, अलबेलापन भी खत्म हो जाएगा, नशा और निशाना एक्यूरेट होना चाहिए, निश्चय हमारी विजय होगी। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें। कोई प्रश्न हो तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं।
राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज।